हम लोग श्रीमद् भागवतम तीसरा स्कंद 15वें अध्याय के 14वें श्लोक पे चर्चा कर रहे हैं। वसन्ति यत्र पुरुषः सर्वे वैकुंठ मूर्तयः ये निमित्त निमित्तेन धर्मेण आराधयन् हरिम। सो इसका अनुवाद और तात्पर्य श्रील प्रभुपाद के द्वारा, श्रील प्रभुपाद की वैकुंठ लोकों में सारे निवासी पुरुषोत्तम भगवान के समान आकृति वाले होते हैं, मतलब चतुर्भुज है ना। वे सभी इंद्रिय तृप्ति की इच्छाओं से रहित होकर भगवान की भक्ति में लगे रहते हैं। तात्पर्य, इस श्लोक में वैकुंठ के निवासियों तथा रहन सहन के स्वरूप का वर्णन हुआ है। उसके निवासी पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान नारायण जैसे होते हैं। वैकुंठ लोकों में कृष्ण का स्वांश नारायण के चतुर्भुजी रूप में प्रधान देव होता है और वैकुंठ लोक के निवासी भी चतुर्भुजी होते हैं, जो भौतिक जगत की हमारी अवधारणा से सर्वथा विपरीत है। भौतिक जगत में कहीं भी हमें चार हाथों वाला मनुष्य नहीं मिलता। वैकुंठ लोक में भगवान की सेवा के अतिरिक्त अन्य कोई वृत्ति नहीं होती है और यह सेवा सोदेश्य नहीं संपन्न की जाती, अर्थात किसी इच्छा से। सोद्देश्य मतलब सउद्देश्य, किसी इच्छा से। यद्यपि प्रत्येक सेवा का विशेष फल होता है, किंतु भक्तगण कभी भी अपनी निजी इच्छाओं की पूर्ति की कामना नहीं करते। उनकी इच्छाएं भगवान की दिव्य प्रेमा भक्ति करने से ही पूर्ण हो जाती है। ओम ज्ञान तिमिरांधस्य ज्ञानांजन शलाकया चक्षुरोन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः। श्री चैतन्य मनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपा कदामयं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्देहं श्रीगुरु श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरुन् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साध्वैतं सावधूतम् परिजन सहित श्री कृष्ण चैतन्य देवम श्री राधा कृष्ण पादान सहगण ललिता श्री शाखान कांश्च। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीन बंधो जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमस्ते तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी कृष्णानु सुते देवी प्रणामी वांछा कल्प तरुभ्य कृपा सिंधु पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो मां। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्वासदि गौर भक्तवृंदा। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। सो बात चल रही है कि पूरे ब्रह्मांड में अंधकार छा गया, सूर्य चंद्रमा का प्रकाश मंद हो गया एक्चुअली। सो प्रभुपाद यहाँ भी कह रहे हैं कि इससे लगता है कि जो वैज्ञानिक कह रहे हैं कि हर ग्रह का अपना अलग से सूर्य चंद्रमा होता है, वो गलत है ये बात। सो ऐसा लगता है कि एक ब्रह्मांड में एक ही सूर्य और चंद्र होते हैं, है ना, अलग अलग नहीं होते। और क्योंकि सूर्य और चंद्रमा प्रकाश के मुख्य स्रोत हैं, तो जब इनका प्रकाश बंद हो गया तो देवी देवता भी सारे घबरा गए, काम बंद हो गया उनका, काम धंधा हो गया, बहुत परेशान हो गए वो, और वो गए ब्रह्मा जी की शरण में। और जाते ही अपना दुखड़ा रोना शुरू नहीं कर दिया, पहले गए और उन्होंने ब्रह्मा जी की प्रशंसा की, है ना, कि आप रजोगुण के अवतार हैं, आप बहुत महान हैं, आप त्रिकालज्ञ हैं, आप पे समय का प्रभाव नहीं होता, आप आपके जन्म का कारण अव्यक्त है, नहीं है ना, क्योंकि स्वयंभू कहते हैं ब्रह्मा जी को, क्योंकि कोई भौतिक कारण नहीं है, भगवान की नाभि से प्रकट हुए हैं वो, है ना। सो उन्होंने बहुत तारीफ की, फिर लास्ट में बोला कि बहुत प्रॉब्लम हो गई है, चारों तरफ अंधकार है, कुछ समझ नहीं आ रहा, प्लीज़ हमें बताएं क्या कारण है और कैसे इस समस्या का निदान होगा, है ना। सो ये बहुत महत्वपूर्ण है कि प्रॉब्लम हुई तो किसी सीनियर की शरण ले ली, किसी वरिष्ठ व्यक्ति की शरण ली, वरिष्ठ व्यक्ति की, गुरु की शरण लेना बहुत इम्पोर्टेंट है ना। अगर हम चाहते हैं कि प्रॉब्लम्स किसके पास नहीं है, सभी के घर में प्रॉब्लम्स है नहीं, और हम अगर ये सोचें कि हम तो खुद ही सॉल्व कर लेंगे प्रॉब्लम्स अपने, तो वो गर्व अहंकार का प्रतीक है ना। सो अगर हमें अपनी प्रॉब्लम सॉल्व करनी है तो हमें गुरु की शरण लेनी पड़ेगी, किसी वरिष्ठ वैष्णव के शरणागत होना पड़ेगा, उनसे अपनी प्रॉब्लम्स बिल्कुल फ्रैंकली डिस्कस करनी पड़ेगी, तो उम्मीद है कि कुछ सॉल्यूशन निकल आए, अदरवाइज संभव नहीं है, है ना। क्यों संभव नहीं है? क्योंकि हम पहले ही भरसक प्रयास कर चुके थे, फिर भी वो प्रॉब्लम खड़ी हो गई। कोई चाहता है कि प्रॉब्लम खड़ी हो? पूरी एफर्ट करते हैं हमने, लेकिन फिर भी प्रॉब्लम खड़ी हो जाती है। तो हमारे पूरे प्रयास के बाद कोई प्रॉब्लम खड़ी हो गई तो हमें सीनियर्स की, गुरु की हेल्प लेनी चाहिए, उससे टाइम भी बचता है ना। हम अपना दिमाग लगाएंगे, अपना प्रयास करेंगे तो हो सकता है टाइम ज़्यादा लगे, प्रॉब्लम सॉल्व हो नहीं हो, तो गुरु की अगर शरण ले लेंगे तो टाइम भी बचेगा और जो मानसिक क्लेश है, प्रॉब्लम का मतलब मानसिक क्लेश, तो वो प्रॉब्लम से भी हम मानसिक क्लेश से भी बच जाएंगे। तो जब देवताओं ने उनको बोला कि बहुत प्रॉब्लम है, आप प्लीज़ बताएं कि इसका क्या कारण है और हमारी हेल्प करें आप, तो अब ब्रह्मा जी ये बात बोल रहे हैं और ब्रह्मा जी बता रहे हैं कि प्रॉब्लम्स खड़ी कैसे हुई, ये वाली ये जो समस्या है कि चारों तरफ अंधकार छा गया, ये प्रॉब्लम खड़ी कैसे हुई, इसके पीछे रीज़न क्या है ना। तो उन्होंने बात की कि जो उनके चार मानस पुत्र हैं उनके, है ना, चार कुमार, वो गए थे वैकुंठ में भगवान के दर्शन करने, है ना। तो सात द्वार थे, छह द्वार क्रॉस कर लिए, है ना। और उन्होंने वातावरण को कपड़े के रूप में पहना हुआ था, जैसे जैन नहीं होते दिगंबर, है ना, लेकिन उनका कॉन्सेप्ट अलग है नंगे रहने का। यहाँ पर जो चार कुमार हैं उन्होंने अपनी आयु तो उनकी बहुत थी, लेकिन एक बालक के रूप में बने रहे, चार पाँच साल का बालक, हाँ, पाँच वर्ष का बालक देखो, है ना। सो पाँच वर्ष का बालक नग्नावस्था में घूमता रहे, कोई बुरा नहीं मानता, वैसे तो सुखदेव गोस्वामी भी नग्नावस्था में घूम रहे थे, है ना, और बच्चे मजाक उड़ाते थे उनके पीछे चलते थे। सो उन्होंने वास्तव में वो नग्न नहीं थे, है ना, उनको कोई सुध-बुध नहीं थी उनको, है ना, और उन्होंने दिशाओं को, वातावरण को वस्त्र के रूप में धारण किया हुआ था, ऐसा नहीं कि वो नंग थे, उन्होंने धारण किया हुआ था दिशाओं को, हम परसीव नहीं कर पा रहे थे, हम उसको, जो साधारण व्यक्ति है वो उसको देख नहीं पा रहा था, है ना। सो तो जब वो गए, जो चार कुमार हैं, तो उन्होंने वैकुंठ लोक के दर्शन किए, तो ब्रह्मा जी बता रहे हैं कि वैकुंठ लोक में होता क्या है, है ना। अब जब वैकुंठ की बात आई गई है तो ब्रह्मा जी बता रहे हैं कि वैकुंठ में एक्चुअली में क्या होता है, वहाँ के लोग कैसे हैं, है ना। जितने पुरुष हैं, जितने व्यक्ति हैं वैकुंठ में, सब चतुर्भुजी हैं, सारूप्य नहीं, पांच तरह की मुक्ति है, एक तो बेकार है, चलो सायुज्य बेकार हो गई, लेकिन जो बाकी की चार है उसमें से एक है सारूप्य नहीं। सारूप्य का मतलब है जैसे भगवान का रूप है वैसे ही आपको वो रूप मिल जाएगा, तो क्योंकि भगवान वैकुंठ में चतुर्भुजी हैं, ये वैकुंठ की बात हो रही है, गोलोक की बात हो रही है, क्योंकि भगवान चतुर्भुजी हैं तो वहाँ के जो निवासी हैं सारे चतुर्भुजी हैं। सो और वो लोग क्या कर रहे हैं, वो लोग बिना किसी इच्छा के बिना किसी इच्छा के भगवान की सेवा में लगे हुए हैं। जब ये कहा जाता है बिना किसी इच्छा के, तो इसका क्या मतलब है? कोई इच्छा नहीं है। तो प्रभुपाद एक्सप्लेन करते हैं, कई जगह प्रभुपाद ने एक्सप्लेन किया, जब बात की जाती है कि कोई इच्छा नहीं है तो एक इच्छा होती है, भगवान की सेवा करना, भगवान को संतुष्ट करना, है ना। कोई इच्छा नहीं है मतलब निजी इच्छा नहीं है, है ना। जब कहते हैं कि निरंकार, कोई अहंकार नहीं है, इसका मतलब एक अहंकार है कि मैं भगवान का दास हूं, है ना। अगर ये अहंकार भी खत्म हो गया कि मैं भगवान का दास हूं, फिर सेवा कैसे होगी, नहीं। सो इसी तरह से जब ये बोला जाता है कि भगवान का स्वरूप नहीं है, निराकार है ना, तो इसका अर्थ हमारे आचार्यों ने बिल्कुल एक मत से हमारे आचार्यों ने बोला, निराकार का मतलब है भगवान का कोई भौतिक स्वरूप नहीं है, है ना। ऐसा नहीं है कि भगवान का स्वरूप नहीं है, भगवान का कोई भौतिक स्वरूप नहीं है। इसलिए हमें जो शब्द है उसका चुनाव बहुत ही सावधानी से करना चाहिए, और जिस भाव में शब्दों का प्रयोग किया गया हमारे शास्त्रों में, हमें उसी भावना के साथ उन शब्दों का प्रयोग करना चाहिए, उनको समझना चाहिए, है ना। शास्त्रों जैसे भागवतम ओरिजिनल तो 4 श्लोक थे, नहीं, लेकिन पूरी भागवतम लिख दी उसको एक्सप्लेन करने के लिए, और फिर भागवतम लिख दी लेकिन क्या भागवतम पढ़ के या भगवद गीता के 700 श्लोक पढ़ के क्या समझ में आ जाएगी? समझ में नहीं आएगी, है ना। क्यों समझ में नहीं आएगी, ये क्वेश्चन है कि हमने चलो भागवतम पढ़ ली, भगवद गीता पढ़ ली, तो समझ में आनी चाहिए ना। आखिर भगवान ने बोली है, भगवान के जैसे व्यास देव जी ने लिखा है, तो हमें समझाने के लिए लिखी है ना। तो अगर हम पढ़ें तो हमें समझ में आनी चाहिए, लेकिन समझ में नहीं आती। अगर हम पढ़ेंगे खुद से तो हम पूरी चीज नहीं समझ पाएंगे, नहीं। तो ये ऐसा क्यों है? तो हमारे आचार्य एक्सप्लेन करते हैं कि ये जो चीज है कि पूरी बात समझ में कभी नहीं आएगी, इसको बोलते हैं व्याकुली भाव, है ना। व्याकुली भाव का मतलब है हम खुद से नहीं समझ सकते। तो व्याकुली भाव क्यों रखा? जैसे व्यास देव है, उन्होंने क्यों रखा व्याकुली भाव? क्या जरूरत थी रखने के लिए, है ना। सिंपल लिखते समझ में आ जाती, है ना। तो व्याकुली भाव इसलिए रखा ताकि गुरु की जो महत्व है, जो गुरु की नीड है, गुरु की जरूरत है, उसको कम नहीं कर दे लोग, है ना। तो ये शास्त्र है, शास्त्र समझने के लिए है, लेकिन हम स्वयं से ये शास्त्र समझ नहीं पाएंगे, है ना। शास्त्रों में सब कुछ है, आप समझ रहे हैं मेरी बात? शास्त्रों में सब कुछ है, लेकिन फिर भी हम समझ नहीं पाएंगे जब तक हम एक गुरु की शरण नहीं लेंगे। इसलिए गुरु का महत्व पहले भी था, आज भी है, आगे भी रहेगा, है ना। बिना गुरु के बिल्कुल स्पष्ट लिखी हुई चीज हम समझ नहीं पाएंगे, क्योंकि व्याकुली भाव उसमें विराजमान रहता है, है ना। हम पूरी तरह से किसी भी चीज को नहीं समझ पाएंगे, असमर्थ है, हमारी इंद्रियां अपूर्ण है, तो हमें गुरु की आवश्यकता है उसको समझने के लिए। सो ब्रह्मा जी बता रहे हैं कि देखो वो लोग गए, देख के बता रहे हैं, वो ऐसे नहीं है कि कोई कवि है वो कल्पना करके लिख रहा है, नहीं, बकायदा बराबर से देख के लिख रहे हैं हम, है ना, कि वहां पे क्या हो रहा था, कौन है, कौन व्यक्ति क्या कर रहा है, नहीं, पूरा देख के लिख रहे हैं। रियलाइज्ड नॉलेज है, ऐसा कुछ मन में आप, ऐसा नहीं है कि कोई यूनिकॉर्न है तो यूनिकॉर्न एक मतलब एक सफेद रंग का सींग वाला घोड़ा खड़ा रहेगा तो अच्छा लगेगा दृश्य में, चलो लिख देते हैं, ऐसा नहीं है, है ना। बराबर से देख के लिख रहे हैं, जैसे जैसे हम भोग आरती गाते हैं ना, भज भगत वत्सल श्री गौर हरि गाते हैं ना, आप लोगों ने गाई है ना, तो उसमें क्या क्या कितनी बातें लिख रहे हैं भक्तिनोद ठाकुर, है ना। सो ये हो गया, वो हो गया, वो यशोदा माई ने आवाज मारी, आ जाओ भैया प्रसाद का समय हो गया, टाइम वेस्ट मत करो, है ना। फिर उन्होंने पकवान बताए, क्या क्या पकवान है, लूची चीनी दही बड़ा मुगद बड़ा, नहीं कितनी सारी चीजें भक्तिनोद ठाकुर बोल रहे हैं, नहीं वो 56 भोग से भी ज्यादा पकवान है। तो फिर उन्होंने बताया कि मधुमंगल क्या कर रहा है ना, बगल बजाए, नहीं बता रहे, नहीं बता रहे, तो कैसे बता रहे हैं, कैसे बता रहे हैं, वो देख के बता रहे हैं, है ना। हमें हमेशा ये चीज ध्यान में रखनी चाहिए, है ना, जो हमारे आचार्य हैं, प्रभुपाद हैं, भक्तिनोद ठाकुर, भक्ति सिद्धांता सरस्वती, ये रियलाइज्ड नॉलेज दे रहे हैं, अनुभव हो गया है उनको, देख पा रहे हैं, देख के बता रहे हैं चीज़ों को, नहीं तो ब्रह्मा जी देख के कि क्या हो रहा है, तो उन्होंने बताया कि वहाँ सारे व्यक्ति चतुर्भुजी हैं, सारे चतुर्भुजी हैं और क्या कर रहे हैं, सेवा में। तो अगर सारे पुरुष सेवा में लगे हैं तो स्त्रियां क्या कर रही हैं, स्त्रियां भी वो लक्ष्मी की प्रतीक हैं, लक्ष्मी के विस्तार हैं, वो भी भगवान की सेवा में लगी हैं, नहीं जैसे ब्रह्मा जी ने बोला ब्रह्म संहिता में, नहीं बोला ना उन्होंने, चिंतामणि प्रखर सद्मसु कल्प वृक्षा, है ना, हर पत्थर चिंतामणि है, हर वृक्ष कल्प वृक्ष है, जो भगवत धाम है हर पत्थर चिंतामणि है, हर वृक्ष कल्प वृक्ष है, चिंतामणि प्रकर सद्मसु कल्प वृक्षा लक्षावृतेषु, और कितने कल्प वृक्ष है वहां पर, 1, 2, 4, 5 लक्षावृतेषु, लाखों करोड़ों है, असंख्य है, गिनती नहीं की जा सकती, लक्षावृतेषु सुरभिर अभिपालयंतम। तो वो करोड़ों लाखों जो वृक्ष है, क्या उसके आसपास क्या हो रहा है, तो ब्रह्मा जी कह रहे हैं कि उन वृक्षों के बीच में, कल्प वृक्षों के बीच में भगवान कृष्ण क्या कर रहे हैं, सुरभिर अभिपालयंतम, गायों को पाल रहे हैं, गायों का पालन कर रहे हैं, नहीं गोविंदा गायों को पाल रहे हैं। सो वो गायों को पाल रहे हैं, वो गायों की सेवा कर रहे हैं, उनकी सेवा कौन कर रहा है, लक्ष्मी सहस्त्र शत संभ्रम सेवमाना, करोड़ों लक्ष्मियां संभ्रम, संभ्रम मतलब बहुत ही आदर सहित, है ना, लक्ष्मी सहस्त्र शत, सहस्त्र शत मतलब सहस्त्र शत, हजारों शत, हजारों को शत से गुना कर दो, लाखों लक्ष्मियां, लाखों लक्ष्मियां, संभ्रम सेव्यमानम, बहुत ही संभ्रम, बहुत ही आदर सहित सेव्यमानम सेवा कर रही है, गोविंद मानि पुरुषम तमहम भजा। सो ये मुख्य वृत्ति है वैकुंठ की, ये वैकुंठ की मुख्य वृत्ति है, मुख्य वृत्ति क्या, एक ही वृत्ति है, एकमात्र वृत्ति है, वैकुंठ का मतलब है कृष्ण केंद्र में है और सब लोग कृष्ण की सेवा में लगे हुए हैं। और इस चीज की ट्रेनिंग कि पूरा जीवन भगवान की सेवा में लगा के रखना है, इसकी ट्रेनिंग जो है भगवान, वो ट्रेनिंग देने के लिए बद्ध जीवों के लिए उन्होंने भौतिक जगत बनाया कि अभी आपको नहीं पता, अभी आप प्रशिक्षित नहीं हो, तो चलो कोई बात नहीं, ये मैं भौतिक जगत बना देता हूँ, आप यहाँ पे ट्रेनिंग ले लो, नहीं यहाँ पे जाके ट्रेनिंग ले लो। और भगवान कृष्ण ने भगवत गीता में बोला है, पूरी भगवत गीता का अगर जो सार है, उद्देश्य अगर एक श्लोक में बोला जाए तो वो कौन सा श्लोक है, हाँ अगर वो होता तो मैं एक क्वेश्चन के पूछता नहीं मुझे पता है आपको ये श्लोक आता है, भगवान का जो उद्देश्य है पूरी भगवत गीता बोलने का, वो भगवत गीता के तीसरे स्कंद तीसरे अध्याय का 30वां श्लोक है ना, मई सर्वाणि कर्माणि सन्यस्य आध्यात्म चेतसा। अपने सारे कर्म, जितने भी आप कर्म कर रहे हो, अपने सारे कर्म क्या है, पूरी शुद्ध चेतना में मुझे समर्पित कर दो, है ना, मुझे समर्पित कर दो। और क्या बोल रहे हैं, निराशिर निर्ममो भूत्वा, है ना, किसी चीज की आशा मत रखो, है ना, किसी भी चीज की आशा मत करो, किसी चीज की इच्छा नहीं होनी चाहिए, निर्ममो और ममत्व की भावना नहीं होना चाहिए, ये मेरा है, ये घर मेरा है, ये स्त्री मेरी है, ये पुरुष मेरा है, ये बच्चे मेरे हैं, ये गाड़ी मेरी है, ममत्व की भावना मत रखो। निर्मम, इस संसार में निर्मम शब्द जो है वो नेगेटिव सेंस में यूज होता है, नहीं, कोई व्यक्ति में अगर दया नहीं है तो उसके लिए निर्मम शब्द प्रयोग करते हैं, नहीं, आपने कभी प्रयोग किया निर्मम शब्द? आजकल तो निर्मम शब्द ही प्रयोग नहीं होता, खत्म हो चुका है, लुप्त हो चुका है बोलचाल की भाषा में, लेकिन पहले के लोग, और दिल्ली से बाहर आप जाएंगे तो हो सकता है आज भी यूपी वगैरह में जहाँ पे कि हिंदी शुद्ध कुछ बोली जाती है, वहाँ पे भी निर्मम शब्द का प्रयोग होता है, एक नेगेटिव क्वालिटी में खराब गुण माना जाता है कि इसमें कुछ भी ममता नहीं है। लेकिन कृष्ण कह रहे हैं ममत्व की भावना नहीं है, वो निर्मम है, है ना। हम लोगों ने शब्द का गलत प्रयोग करना शुरू कर दिया, है ना। सो निर्मम का मतलब है कि ममता नहीं होनी चाहिए, ममत्व की भावना नहीं होनी चाहिए कि ये मेरी वस्तु है, ये शरीर मेरा है, मैं ये शरीर हूं, नहीं, है ना। निराशिर निर्ममो भूत्वा, कि कोई इच्छा मतलब को सारी इच्छाओं का त्याग कर दो, है ना। और निर्मम भूत्वा, भूत्वा मतलब बनकर, हाँ, निराशिर निर्ममो भूत्वा युद्धस्व विगत ज्वरा, युद्ध करो हे अर्जुन, युद्ध करो, विगत ज्वरा, विगत ज्वरा मतलब आलस्य छोड़कर, है ना, आलस्य मत करो, विगत ज्वरा मतलब आलस्य मत करो, है ना। ये जो श्लोक है प्रभुपाद बोल रहे हैं, आप रिपोर्ट करेंगे तो पहली लाइन ही प्रभुपाद बोल रहे हैं कि ये भगवत गीता का उद्देश्य बता रहे हैं भगवान यहाँ पर, है ना, ये उद्देश्य बता रहे हैं विगत ज्वरा। और इसीलिए अगर हम जब शुद्ध भक्त के लक्षण पढ़ते हैं तो शुद्ध भक्त के मन में, किसी व्यक्ति के मन में क्या चल रहा है कैसे पता लगा सकते हैं, नहीं, आप अभी बैठ के क्या सोच रहे हो, मैं क्या सोच रहा हूँ, आप पता नहीं लगा सकते, आपके मन में क्या चल रहा है मैं पता नहीं लगा सकता, है ना। तो कैसे पता चलेगा कोई व्यक्ति शुद्ध भक्त है या नहीं है, है ना। तो अगर हम प्रैक्टिकल लेवल पे देखें कि कोई व्यक्ति शुद्ध भक्त है या नहीं है, कोई व्यक्ति उत्तम अधिकारी है या नहीं है, तो देखने का एक विशेष गुण है जिसके द्वारा हम देख सकते हैं, वो विशेष गुण क्या है, अव्यर्थ कालत्व, अव्यर्थ कालत्व मतलब एक क्षण भी वेस्ट नहीं कर रहे, है ना। तो विगत ज्वरा और अव्यर्थ कालत्व एक ही बात है, है ना। आलस्य मत करो या एक क्षण भी वेस्ट मत करो, एक ही बात है, हर क्षण भगवान की सेवा में लगाओ, हर क्षण, है ना। एक भी क्षण ऐसा नहीं जाना चाहिए कि वो भगवान की सेवा में नहीं लगे। अव्यर्थ कालत्वम विगत ज्वरा, विगत ज्वरा मतलब कुछ एक क्षण भी वेस्ट नहीं होना चाहिए। अगर आप हर क्षण भगवान की सेवा में लगाओ या हर क्षण भगवान की सेवा के बारे में सोचो, सोचोगे तो करोगे, है ना। अगर सोचेंगे ही नहीं, है ना, अगर हमने जैसे भगवान ने भगवत गीता में बोला ना, ध्यायतो विषयान् मुमुक्षुः संगतेषु जायते, है ना, सोचेंगे तो आसक्ति उत्पन्न होगी, अगर सोचेंगे ही नहीं तो आसक्ति उत्पन्न कैसे होगी। अगर विषय भोगों में आसक्ति चाहिए तो उसके बारे में सोचना पड़ेगा। इसी प्रकार अगर भगवान में आसक्ति चाहिए तो भगवान के बारे में सोचना पड़ेगा, भगवान की सेवा कैसे करनी है उसके बारे में सोचना पड़ेगा। जब हम सोचेंगे तो कभी ना कभी हम उसको करेंगे, हमारे में करने की इच्छा उत्पन्न हो जाएगी, नहीं? सो और किसी भी चीज की इच्छा नहीं होनी चाहिए, ये सब जगह इस बारे में बात हो रही है ना। हमारे शास्त्रों में बताया, चैतन्य चरितामृत में लिखा है, अन्या अभिलाषिता शून्यम। जब शुद्ध भक्ति की परिभाषा दे रहे हैं, नहीं, शुद्ध भक्ति की परिभाषा क्या है? अन्या अभिलाषिता शून्यम, अन्य अभिलाष शून्य, कि कोई भी अन्य अभिलाष नहीं होनी चाहिए, इतर अभिलाष नहीं होनी चाहिए, है ना। भगवान के अतिरिक्त किसी भी उद्देश्य, किसी भी विषय वस्तु पर ध्यान नहीं जाना चाहिए, है ना। भगवान के अतिरिक्त किसी भी वस्तु के बारे में नहीं सोचना चाहिए कि ये वस्तु कैसे प्राप्त करें, है ना। और अगर हम ध्यान नहीं लगाएंगे, अगर नहीं हमें मिलेंगी, अगर हम उसके बारे में नहीं सोचेंगे तो वो चीज़ हमें मिलेगी कैसे? तो प्रभुपाद इसके रिपोर्ट में लिख रहे हैं यहाँ पर, नहीं, आप देखिए कि प्रभुपाद बोल रहे हैं कि यद्यपि प्रत्येक सेवा का विशेष फल होता है, किंतु भक्तगण कभी भी अपनी निजी इच्छाओं की पूर्ति की कामना नहीं करते, है ना। अन्य अभिलाषिता शून्यम, कभी भी कामना नहीं करते, तो क्या उनकी इच्छाएं पूरी, क्या उनको जो जरूरत है, जो आवश्यकता है, क्या वो पूरी होगी नहीं होगी? हाँ, तो प्रभुपाद लिख रहे हैं उनकी इच्छाएं भगवान की दिव्य प्रेमा भक्ति करने से ही पूर्ण हो जाती है, है ना। श्रद्धा शब्द विश्वास सुदृढ़ निश्चय कृष्ण भक्ति कैला सर्व कर्म करते, अलग से कुछ करने की आवश्यकता नहीं है, कृष्ण भक्ति करेंगे सारी आपकी इच्छाएं, आपकी आवश्यकताएं, इच्छाएं नहीं, आपकी आवश्यकताएं सारी पूरी हो जाएंगी, है ना। क्यों? क्योंकि कृष्ण पूरी प्रजा का विशेष ध्यान रखते हैं, लेकिन अपने संतान, अपने भक्तों का विशेष ध्यान रखते हैं, विशेष रूप से उनके बारे में चिंतन करते हैं भगवान, कि ये अपने बारे में सोच नहीं रहा तो कैसे इसकी गाड़ी चलेगी, तो मुझे ही कुछ करना पड़ेगा, मैं कैसे इसका ऋण उतारूं, मुझे ही कुछ करना पड़ेगा। लेकिन अगर कोई अनन्य भाव से सेवा कर रहा है तो भगवान उसका ऋण उतारने में असमर्थ हो जाते हैं। तब भगवान क्या बोलते हैं, जैसे भगवान ने गोपियों को बोला कि आपकी भक्ति ही आपका पुरस्कार है, मैं कुछ नहीं दे सकता, मेरे पास कुछ नहीं है आपको देने के लिए। सो आप अपनी भक्ति को जिस इतने तीव्र भाव से जो आप मेरी भक्ति कर रहे हो, यही आप इसको अपना पुरस्कार समझ लो, मैं आपको अलग से कुछ देने में असमर्थ, नहीं। इस भक्ति भाव को सिखाने के लिए, इस भक्ति भाव के बारे में बताने के लिए भगवान कृष्ण है। और ये भक्ति कैसे करनी है, ये वैराग्य, ये अन्य अभिलाषिता शून्यम कैसे अपने जीवन में उतारना है, ये दिखाने के लिए भगवान दोबारा आए चैतन्य महाप्रभु के रूप में। जब रूपा गोस्वामी ने चैतन्य महाप्रभु की प्रशंसा में अनेक श्लोक कहे, है ना, लेकिन एक श्लोक ऐसा था चैतन्य महाप्रभु ने पढ़ा और उसको फाड़ दिया। रूपा गोस्वामी ने श्लोक लिखा और दो श्लोक लिखे थे वास्तव में, आप चैतन्य चरितामृत पढ़ेंगे आपको मिल जाएगा। तो उन्होंने वो श्लोक लिखे और वो श्लोक लिख के उन्होंने मुकुंद और जगदानंद पंडित को दिए। तो वो कह रहे हैं चलो हम जा रहे हैं चैतन्य महाप्रभु से मिलने, लाओ श्लोक हमें दे दो, हम उनको दिखा देंगे, है ना। तो बहुत ही हिचकते हुए, बहुत ही संकोचवश रूपा गोस्वामी ने वो श्लोक उनको पकड़ा दिए, ठीक है आप दिखा देना। तो जब मुकुंद और जगदानंद पंडित ने वो श्लोक पढ़े तो बहुत ही विवल हो गए वो, लेकिन बहुत चालाक थे, बहुत ही बहुत ही इंटेलिजेंट थे, उन्होंने कहा ये श्लोक जीवित नहीं बचेंगे। तो उन्होंने क्या किया, वो श्लोकों को चैतन्य महाप्रभु के रूम में घुसने से पहले बाहर दीवार पर लिख दिया उस श्लोकों को। और जब वो मुकुंद और जगदानंद पंडित गंभीरा में चैतन्य महाप्रभु के दर्शन के लिए गए और चैतन्य महाप्रभु को उन्होंने दिखाया कि ये रूपा गोस्वामी आपके भक्त ने नए दो श्लोक लिखे, चैतन्य महाप्रभु ने पढ़ा और फाड़ के फेंक दिया। लेकिन वो श्लोक लुप्त नहीं हुए, मुकुंद और जगदानंद की कृपा से वो श्लोक आज भी उपलब्ध है। तो उसमें से एक श्लोक जो है वो क्या है, वैराग्य विद्या निज भक्ति योग। कि वैराग्य विद्या निज भक्ति योगम शिक्षार्थम, ये सिखाने के लिए, क्या सिखाने के लिए, वैराग्य। वैराग्य मतलब किस प्रकार से इच्छा रहित रहकर जीवन बिताया जा सकता है। सो वैराग्य विद्या भगवत ज्ञान, भगवान की भक्ति कैसे करनी है, वैराग्य विद्या निज भक्ति योगम, अपनी भक्ति। कृष्ण और चैतन्य महाप्रभु में कुछ भेद नहीं है, अपनी ही भक्ति सिखाने के लिए शिक्षार्थम वैराग्य विद्या निज भक्ति योगम शिक्षार्थम एकः पुरुषः पुराणः। बहुत प्राचीन पुरुष हैं, बहुत ही प्राचीन है, आद्यम पुराण पुरुषम नवयोरम च, है ना। ब्रह्मा जी भी कह रहे हैं कि आद्यम आदि पुरुष हैं लेकिन बूढ़े नहीं है, नवयोरम च, नौजवान है, नवयुवक है, 16 साल से आगे उनकी आयु नहीं बढ़ती है ना। सो रूपा गोस्वामी जी ने क्या बोला, वैराग्य विद्या निज भक्ति योगम शिक्षार्थम एकः पुरुष पुराण। ये सिखाने के लिए आए कि किस प्रकार से वैराग्य विद्या का पालन करना है, वैराग्य का अनुशीलन करना है, क्या सीखना है भगवान के बारे में, भगवान की लीलाओं के बारे में, भगवान को क्या अच्छा लगता है क्या बुरा लगता है उसके बारे में ज्ञान प्राप्त करना, और किस प्रकार प्रैक्टिकली भगवान की सेवा में जुड़ना है, है ना। ये सिखाने के लिए भगवान कृष्ण इस धराधाम पर अवतरित हुए। कैसे अवतरित हुए, तो रूपा गोस्वामी कह रहे हैं श्री कृष्ण चैतन्य शरीरधारी, भगवान कृष्ण प्रकट हुए श्री कृष्ण चैतन्य महाप्रभु के रूप में। और श्री कृष्ण चैतन्य महाप्रभु कौन है, उनका क्या लक्षण है चैतन्य महाप्रभु का, तो रूपा गोस्वामी बोल रहे हैं कृपां बुद्धिर, कि वो कृपा रूपी समुद्र है, वो कृपा के सागर है, उसकी अगर एक बूंद भी मिल गई, रूपा गोस्वामी कह रहे हैं। और कृष्णदास कविराज गोस्वामी चैतन्य चरितामृत में कह रहे हैं कि मैं वो सागर नहीं दे रहा आपको, चैतन्य चरितामृत सागर नहीं है, वो चैतन्य महाप्रभु रूपी समुद्र की एक बूंद है, लेकिन ये बूंद अपने आप में इतनी शक्तिशाली है, इतनी पोटेंसी है इस बूंद में कि सारे ब्रह्मांड भगवत प्रेम में सराबोर कर सकती है, डुबो सकती है। तो ये एक बूंद है समझ के इसका तिरस्कार मत करना, ये मत समझ लेना कि ये एक बूंद है, एक बूंद से क्या होगा, ये एक बूंद में इतनी शक्ति है कि सारे ब्रह्मांड डुबो देगी कृष्ण प्रेम। तो वो एक बूंद में जितनी शक्ति है, तो वो जो सागर है उस कृष्ण प्रेम
कि जो सागर है कृपां बुद्धिर यह तम अहम प्रपद्ये, मैं उन श्री चैतन्य महाप्रभु को प्रणाम करता हूँ, है ना। तो रूप गोस्वामी ने ये श्लोक लिखा और भगवान ने चैतन्य महाप्रभु ने पढ़ते उसको फाड़ के फेंक दिया, क्योंकि वो एक भक्त के रूप में आए थे, एक भक्त का आचरण कर रहे थे, वो ये सिद्धांत नहीं प्रस्तुत करना चाह रहे थे कि किसी व्यक्ति को, कोई भी व्यक्ति आए उसको भगवान समझ के वो अपने आप को भगवान बोलना शुरू कर देते हैं ना। बहुत ही विनम्रता का अनुशीलन कर रहे थे। और चैतन्य महाप्रभु ने क्या टाइम हो गया, ओके 5 मिनट और लेते हैं ना। तो चैतन्य महाप्रभु ने रघुनाथ दास गोस्वामी के माध्यम से हमें दिखाया कि अन्य अभिलाषिता शून्यम क्या होता है, वैराग्य क्या होता है। करोड़ों की संपत्ति है, लाखों रुपए मासिक आमदनी है, सब छोड़ के रघुनाथ दास गोस्वामी जगन्नाथपुरी में आए चैतन्य महाप्रभु की सेवा करने के लिए। और जब वो आए जगन्नाथपुरी में तो उनके घर वाले उनकी चिंता कर रहे थे, है ना। उनके घर वाले उनके बारे में सोच रहे थे कि कैसे होगा, कैसे अपना पालन करेगा, कहाँ रहेगा, क्या खाएगा। तो कुछ पैसे भेजते थे, सो वो पैसे रघुनाथ दास गोस्वामी स्वीकार कर लेते थे, है ना। लेकिन उस पैसे से क्या करते थे, उस पैसे से वो चैतन्य महाप्रभु और भक्तों को इनवाइट करते थे प्रसाद के लिए, और वो सारे पैसे उनकी सेवा में लगा देते थे। लेकिन कुछ समय बीतने के बाद रघुनाथ दास गोस्वामी ने बोला कि मैं विषयी लोगों के पैसे क्यों लूं, मुझे नहीं चाहिए विषयी लोगों के पैसे, मैं कब तक ये उम्मीद लगा के बैठा रहूंगा कि वो महीने की 5 तारीख 7 तारीख होने वाली है, पैसे आने वाले होंगे, मैं इसके बारे में अब नहीं सोचता रह सकता, पैसे लेने बंद कर दिए। पैसे लेने बंद कर दिए तो अब उन्होंने चैतन्य महाप्रभु को प्रसाद के लिए आमंत्रित करना बंद कर दिया, क्योंकि प्रसाद के लिए बुलाएंगे तो पैसे लगेंगे, प्रसाद का अरेंजमेंट कहाँ से होगा। तो चैतन्य महाप्रभु ने स्वरूप दामोदर से पूछा, बहुत टाइम हो गया रघुनाथ ने मुझे बुलाया नहीं प्रसाद के लिए, क्या चक्कर है। तो स्वरूप दामोदर ने बोला उसने अपने घर से पैसे लेने बंद कर दिए। चैतन्य महाप्रभु ने कहा, बहुत अच्छा, तो उसका अब खर्चा कैसे चल रहा है, निर्वाह कैसे कर रहा है। तो स्वरूप दामोदर गोस्वामी ने बोला कि वो नरसिंह द्वार पे खड़ा रहता है सीढ़ियों पे, आप सबने देखा है ना नरसिंह द्वार, है ना, कितनी सारी सीढ़ियां हैं जब अंदर घुसते हैं, तो वहीं पे रघुनाथ दास गोस्वामी एक सीढ़ी पे खड़े रहते थे, और वहां पे जो कोई भी आके उनको भिक्षा देता था, कह रहे उस भिक्षा से अपना निर्वाह करते हैं। तो चैतन्य महाप्रभु ने कहा, बहुत अच्छा, उसका वैराग्य बढ़ गया, वैराग्य बढ़ गया, अच्छी बात है, है ना, अच्छी बात है वैराग्य बढ़ गया। तो चैतन्य महाप्रभु भी वहां से निकलते थे तो देखते थे खड़ा हुआ रघुनाथ दास गोस्वामी। लेकिन कुछ दिनों के बाद वहां पे रघुनाथ दास गोस्वामी दिखना बंद हो गए, तो चैतन्य महाप्रभु ने दोबारा स्वरूप दामोदर गोस्वामी से पूछा, भाई तुम्हारा चेला दिख नहीं रहा आजकल वहां पर। तो उन्होंने बोला उसने वहां पे खड़ा होना बंद कर दिया। तो क्यों बंद कर दिया, तो बोला कि उसको लग रहा है कि जो भिक्षा मांग रहे हैं, तो भिक्षा मांग रहे हैं मतलब उनको लग रहा है कि मैं एक वैश्या की तरह हूं, लोग आ रहे हैं वो सोच रहे हैं कि इसमें से कौन मुझे पैसे देगा, एक वैश्या का, वैश्या की मनोवृत्ति मन में आ रही है। तो उस वृत्ति से छुटकारा पाने के लिए उन्होंने वहां पे खड़ा होना बंद कर दिया। बहुत अच्छा, वैराग्य और बढ़ गया। तो गुजारा कैसे हो रहा है उसका, भोजन कैसे खा रहे हो, तो रघुनाथ तो स्वरूप दामोदर गोस्वामी श्रीपाद ने बोला कि जो चैतन्य महाप्रभु को भोग लगता है फिर वो प्रसाद के रूप में वितरित होता है, जो बच जाता है सारा प्रसाद बिक नहीं पाता, जो बच जाता है वो गायों को डाल देते हैं, लेकिन गायें भी पूरा नहीं खा पाती और कुछ जो चावल होते हैं वो सड़ जाते हैं, गायें भी खाने से मना कर देती है। तो रघुनाथ दास जो है वो शाम को रात को जाता है, वो सड़े हुए चावल उठा लेता है, उसको धो के ऊपर वाला जो आवरण है वो हटा के अंदर वाला जो सख्त पदार्थ है उसको खा जाता है। चैतन्य महाप्रभु ने कहा ये तो बहुत ही अच्छा कर रहा है, वैराग्य और बढ़ गया। तो चैतन्य महाप्रभु ने कहा कि मैं भी देखूंगा क्या खा रहा है। तो एक बार चैतन्य महाप्रभु अचानक रघुनाथ दास गोस्वामी की भजन कुटीर में पहुंचे और रघुनाथ दास गोस्वामी के जो पात्र है उसमें से वो सड़े हुए चावल निकाल के चैतन्य महाप्रभु ने खाए और चैतन्य महाप्रभु ने कहा कि इससे स्वादिष्ट भोजन मैंने आज तक नहीं खाया। भगवान को 56 भोगों से कुछ लेना देना नहीं है, भगवान को कुछ फर्क नहीं पड़ता, अगर फर्क पड़ता तो भगवान दुर्योधन के 56 भोग खा लेते, विदुर के घर जाके केले के छिलके नहीं खाते, नहीं। भगवान को पकवानों से कुछ लेना देना नहीं है, भगवान भक्त की भावना को ग्रहण करते हैं। भगवान चैतन्य महाप्रभु जब किसी भक्त में वैराग्य देखते हैं, जब वो देखते हैं किसी भक्त के हृदय में भौतिक जगत के प्रति विरक्ति उत्पन्न हो रही है, बढ़ रही है, तो उसको देख के चैतन्य महाप्रभु को बहुत प्रसन्नता होती है और उस भक्त को चैतन्य महाप्रभु की भगवान कृष्ण की विशेष कृपा प्राप्त होती है। सो, ये जो भौतिक जगत है ये एक ट्रेनिंग सेंटर है, हमें ट्रेनिंग सेंटर में एडमिशन मिल गया उसको वेस्ट नहीं करना चाहिए, अच्छी तरह से ट्रेनिंग लेते हैं ताकि हम लोग जब पूरी तरह से परिपक्व हो जाएंगे, दक्ष हो जाएंगे, तो हम भगवत धाम जाकर हम भगवान की सेवा में निर्बाध बिना किसी बाधा के जुटे रहेंगे। हमारे शास्त्रों में लिखा है कि जो लक्ष्मियाँ हैं वो कपड़े से वैकुंठ में जो भगवान का जो महल है उसकी दीवारें साफ करती हैं। तो हमारे आचार्य क्वेश्चन उठाते हैं कि वैकुंठ में तो डस्ट है ही नहीं, वैकुंठ में डस्ट नहीं है, ये धूल झक्कड़ सब यहीं पर है, वैकुंठ में डस्ट नहीं है तो लक्ष्मी साफ क्यों कर रही है? आप समझ रहे हो क्वेश्चन? दीवार है, साफ है, साफ है तो लक्ष्मियां क्यों कपड़े से उसको साफ कर रही हैं दीवार को, है ही नहीं धूल। तो हमारे आचार्य एक्सप्लेन कर रहे हैं भगवान को संतुष्ट करने के लिए, है ना, कुछ और नहीं मिला तो चलो भगवान का जो महल है, जो भगवान की संपत्ति है, भगवान का ऑल्टर है, उसी को साफ करना चाहिए। आप सबको भी कपड़ा रखना चाहिए अपने पास, जब भी आप मंदिर जाएं तो ये मत सोचो कि चमक रहे हैं, जो ग्रिल है चमक रही है, जो भगवान का जो ऑल्टर है, जैसे पंजाबी बाग जाएं तो संगमरमर का बना हुआ है, आप राधा पार्शवती के दर्शन करें तो बहुत ही क्लीन एकदम चमक रहा होता है, फिर भी कपड़ा अपने पास रखो और जाओ और उसको साफ करो। आप साफ कर रहे हैं भगवान की प्रसन्नता के लिए, नहीं। लोग आधा घंटा भगवान के सामने खड़े रहते हैं, कुछ करते नहीं, 2 मिनट खड़े हो पर्याप्त है, लेकिन सेवा करो, है ना। अगर आपको आगे जाके भगवान के दर्शन करने हैं तो कोई सेवा लेके जाओ, नहीं तो प्रभुपाद के पीछे खड़े होकर दर्शन करो, है ना। प्रभुपाद को पीठ दिखा के भगवान के सामने ऑल्टर में अंदर घुसने की कोशिश करने से क्या लाभ मिलने वाला है, कुछ लाभ नहीं मिलेगा। पहले सेवा अपने कब्जे में करो, पहले आपके हाथ में सेवा होगी तो आगे जाने का अधिकार मिलेगा, तो आगे जाओ और करीब से भगवान के दर्शन कर लो। अगर सेवा नहीं है चुपचाप पीछे खड़े रहना चाहिए। क्यों? क्योंकि भगवान जब प्रभुपाद पे, भगवान हमेशा प्रभुपाद को देखते रहते हैं और हम प्रभुपाद के पीछे खड़े रहेंगे तो हो सकता है भगवान हमें देख ले, आगे खड़े हुए व्यक्ति को नहीं देखेंगे भगवान, है ना। ये बात हमें हमेशा ध्यान रखनी चाहिए। हरे कृष्णा।